extension.
Oh. 我们看完这个。
Baba ne? Kya kaha aaj? Amrit Roy?
Shanti ki shakti ko badhane ke liye.
Shanti ki shakti. Silence power. Aur kaun kaun se naam hai is shakti ko? Ek hai shanti ki shakti, ek hai silence power. Aur?
Mon ki shakti.
Mon ki shakti. Actually, agar dekha jaye to silence matlab mon. Par Baba mon ki riti se kabhi usne prayog nahi kiya. Mon ki riti se nahi. Atmik shakti. विल पावर ये सारे एक ही शब्द एक ही है योग बल सबसे निकटतम शब्द योग बल है
अंतर्मुक्ता
हाँ वो तो है अंतर्मुक्ता पर साइलेंस पावर अर्थात योग बल बाबा के साइलेंस पावर योग बल आत्मिक शक्ति विल पावर आत्मा परमात्मा के मिलन के परमात्मा शक्ति भी कहा जा सकता है मनोबल मन की शक्ति माइंड पावर ये सब एक ही चीज है अगर देखा जाए तो ये है साइलेंस पावर साइलेंस पावर संसार में साइलेंस का अर्थ होता है मौन बाबा मौन की रीति से कभी उसका उपयोग होता है चुप रहना ये मौन है उपवास एक रीति से शब्दों का तो साइलेंस पावर को बढ़ाने के लिए क्या करें दो बातें बताइए बाबा ने इसके लिए एक तो मन और एक मुख
मुख
मन से क्या करे और मुख से क्या करे संकल्पों को समेटना व्यर्थ संकल्पों को समेटना मन की आवाज और दूसरा मुख मुख का मौन व्यर्थ जो बोध है वाणी से वैराग वाणी से वैराग ये सबसे बड़ा वैराग है बाबा जो बोलता है वो धीरे धीरे बोलता है उसका बोलना जो है संसार का कोई वक्ता ऐसा नहीं बोलता है अगर उसको ऐसे बीच में खड़ा किया जाए ये और संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ता तो इसका जो बोलना है और इनका बोलना है ये लोग थोड़े प्रिपेयर्ड रहते हैं ये कोई प्रिपरेशन नहीं है ये जो बोलता है बीच बीच में साइलेंस है बीच बीच में गैप है इसका बोलना एक रीति से एक मेडिटेशन है वो बोलना उसके पास कोई वो प्रिपेयर करके नहीं आया कि जो उसे बस बताना है उसके बोलने के साथ साथ उसके अस्तित्व वहां खड़े रहने के साथ साथ बहुत सारी चीजें वो कर रहा है तो वो साथ साथ बोलते समय दृष्टि से भी बहुत कुछ कर रहा है
जो पुरानी मुरलियां है ना उनके ऑडियो जब सुनते हैं तो बाबा एक सेंटेंस बोल के बहुत साइलेंस में चला जाता है फिर बोलता है
हाँ, तो ये जो बोलना है इंटरप्टेड स्पीच है एक एक इससे नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है फिर रुक रहा है बोल रहा है फिर रुक रहा है बोलता है रुकता है हाँ वो शब्द जो चालू होती मुरली चालू होती है ये चीजें करनी है तुमको दो अभी वो दो चीजें करनी है वहां से मुरली चालू हो रही है फिर ये उससे जो पहली चीज है वो करने के लिए चार चीजें करनी है ठीक है चार चीजों में से एक ये वो दो तीसरी चौथी बाद में बताएंगी कभी फिर वो कहां से चालू हो गया फिर वो दूसरी चीज पर आ जाएंगे और ये सब धीरे धीरे चल रहा है वो दूसरी चीज को करने के लिए और चार चीजें तीन चीजें और करनी है उसमें से पहली कौन सी और दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी है कभी कभी वो खो जाता है और उसका वो पूरा लिंक रहती है और आखिरी में पूरा ऐसे विश्व कल्याणकारी समर्थ बच्चों को दर्शनीय मूर्त बच्चों को ऐसे बच्चों को वैसे बच्चों को बाप दादा का याद करो तो ये जो वक्ता है और वो जो है बहुत अंतर है गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय भागवत में लिखा है सुखदेव बैठा हुआ है वो गुरु है शिष्य बैठे हुए ना गुरु कुछ बोल रहा है ना शिष्य कुछ प्रश्न पूछ रहे गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम उसका मौन का ही व्याख्यान है वो मौन से ही शिष्यस्तु चिन्ह संशय शिष्यों की जो संशय है वो मौन से ही दूर हो रहे हैं, मौन में इतनी पावर है। बाबा कहते हैं ना तुम भी कैसे टीचर्स हो, संसार के जो टीचर है वो वक्ता जो है वो, या एक्टर्स जो है वो हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं, परंतु नहीं अशरीर नहीं बना सकते। अव्यक्त महावाक्य है, संसार के जो लोग है एक्टर्स है वो हंसा सकते हैं रुला सकते हैं, परंतु अशरीर नहीं बना सकते, वो केवल तुम बना सकते हो और कोई नहीं। तो साइलेंस की पावर जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मन और दूसरा है बोल। इस बोल अगर मुख को वश में कर लिया जाए, मुख में दो चीजें, एक जीभ और बोल, तो हो गए, बाकी सारी कर्मेंद्रिया वश में हो जाएगी। कहा ना उस दिन इंद्रियों की चंचलता बिना योग बल के नहीं टूटेगी। अभी अभी चलिए मुरली कुछ कर्मेंद्रिय भयंकर चंचल है। एक योगी, गीता में श्लोक है ना, एक योगी जो अपने इंद्रियों को अपने स्वयं को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, उसकी उसको भी वो तूफान ऐसे जब आता है उसकी नाव को भी कहां से कहां ले जाता है। कर्मेंद्रियों की चंचलता इतनी भयंकर है, बड़े बड़े योगी भी वश में नहीं कर पाते, उसके वश हो जाते हैं। तो अगर इस मुख को वश में कर लिया जाए, मुख और जिह्वा दो चीजें, जिह्वा में स्वाद रस, उसको अगर वश में कर लिया जाए और बोल को वश में कर लिया जाए, तो स्थिति एक ही दिन में ऊपर चली जाएगी सीधा। कैसे करेंगे स्वाद को वश में,
स्थिति तो एक दिन में जाएगी ना, अभ्यास लंबे समय का
होगा। दोनों चीजें हमारे वश में, आज भी कहा ना मन बुद्धि संस्कार त्रिमूर्ति शक्तियां, हम रचता है वो रचना है, कारो वो हमारे कर्मचारी है, सहयोग सहयोग नहीं अधिकार की शक्ति से उनको कार्य में लगाना है। साकार कर्मेंद्रियों को भी वश में करना है, हम मास्टर रचता है, वो सब हमारी रचनाएं हैं, पर ही हमें याद नहीं रहता, हम रचना के वश होते हैं। इस संसार की कोई भी चीज वस्तु और पदार्थ हमें आकर्षित ना कर सकते, उस आकर्षण से मुक्त होने के लिए कुछ एक ऐसा आकर्षण ढूंढना पड़ेगा जो उनसे परे है, उनसे अति श्रेष्ठ है, वो उसके सामने तुच्छ नजर आए। जो सुख उसमें मिलता है कोई और भी ऐसा सुख है जो उससे भी परे है, वो उसकी प्राप्ति उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी, तो वो होगा नहीं तो नहीं। तो साइलेंस पावर जमा करने के लिए एक तो मुख का मौन भी कहा बाबा ने, और मुख का और मन के भी व्यर्थ संकल्प, बाबा ने कहा अंतर्मुखता ही समर्थ ही अंतर्मुखता है, व्यर्थ बाह्य मुक्ता है। बाह्य मुक्ता का रस और अंतर्मुखता का रस दो चीजें, जब वो रस को हम चख लेते तो ये टीका पड़ जाता है इसके साथ, उसमें विस्तार है बहुत, इसमें सार है। तो आज की मुरली बाबा ने कहां से चालू की, बाबा को क्या हो रहा है, नहीं बाप दादा बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, देखकर, और पहले नहीं, पहले हर्षित नहीं थे क्या?
लेकिन बताना तो पड़ेगा ना आगे, जब आया नीचे तो बताएगा ना कि क्या है वो,
ये इसको होता क्या क्या है वो ही स्टडी करने की बात है। उसकी क्या भावना है,
पहले सामान्य
सामान्य अवस्था, मतलब उसकी भी सामान्य और हर्षित और ऐसी अवस्थाएं है,
बच्चों को देख के हर्षित होते हैं पहले,
वही तो कहा ना बाप दादा, बस पहले का मुरली का महावाक्य, बाप दादा बच्चों को देख कर हर्षित होते हैं, तो इसका क्या अर्थ है,
तो मीडिया वाले की तरह पूछ रहा
हूँ। तो पहले कैसे थे, रह नहीं सकता, मुझे चैन नहीं आता है, ये सब बोलता है, पर वो इतना आसान मत समझना उसको। उसको एक वाक्य को समझने के लिए उसके उसी विषय पर कहे हुए 10 वाक्यों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा, क्योंकि उसने वो और भी बहुत सारी बातें कही है। उसने ये भी कहा है मुझे, मैं अपने टाइम पर आता हूँ, मेरी तो ड्यूटी है आना, तुम्हारे बुलाने से थोड़ी आता हूँ, मुझे किसी से क्या लेना देना, मैं अपना कर्तव्य करता हूँ बस। दिव्य दृष्टि का किसी को साक्षात्कार होता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कल ही बोला था मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ ही खड़े कर दिए पूरे। हाँ तुम मेरे, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। कभी कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मैं जानी जाना रहा थोड़ी ना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे थोड़ी पता है। उसने अपने ऐसे अपने आप को छुपा रखा है। बाबा तुमने दुख दिया, दुख मैंने नहीं दिया, रावण वो खड़ा है। बाबा तुमने दुखधाम क्यों रचा, मैंने सुखधाम, ये दुखधाम ये रचने वाला ये इधर है रावण। बाबा तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ड्रामानुसार, ड्रामा को खड़ा कर दिया एक तरफ, ड्रामानुसार पहले क्यों नहीं आए, ड्रामानुसार आता हूं, ये प्रकृति में कैसे हो रहा है, कुदरत और अपने आप को ऐसे, संजय भाई बाबा ने ऐसे कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, मेरे को कुछ पता नहीं, पूछो मत, पूछे भी मत, जो हो रहा है ड्रामा अनुसार, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, जो जो कुछ पाप विकर्म हुए वो रावण और बाकी जो है वो कुदरत, ये दोनों ने नहीं जो किया वो कुदरत, नदी किसने बनाई, पहाड़ किसने बनाए, वो सब कुदरत।
सतयुग के बारे में भी तो बोलता,
तो आप क्या,
सतयुग के बारे में भी तो कहता मैं आता नहीं हूँ लेकिन मेरे को सारी नॉलेज है,
वो आता भी होगा
लेकिन कभी बोला ही नहीं मैं आता हूँ।
वो बोलने की बात थोड़ी, हर बात थोड़ी ना बोली जाती, कुछ बातें गुप्त रखती है,
ये भी बात सही है।
फिर वो अगर आता है तो वो पूरा फिलोसफी चेंज हो जाती है, सिद्धांत तो पूरे ये हो जाते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, क्यों, क्योंकि विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि बाप दादा स्वयं विश्व कल्याणकारी है। हमेशा कहता है तुम्हारे मस्तक पर ये है भाग्य की लकीर है, कभी तीन कभी दो कभी पांच, तुम्हारे नैनों में कुछ और, तुम्हारे मुख में मुस्कान, तुम्हारे दिल में दिलाराम, तुम्हारे पद्मों में कदम, कदमों में पदम, हाथों में ज्ञान का कलश, पेट में वो नहीं बोला अभी ब्रह्मा भोजन बोला नहीं अभी तक, बोलेगा कभी। हमेशा हमारे लिए कहता है, अभी वो खुद के लिए कह रहा है कि बाप के संकल्प में क्या, बाप के बोल में क्या, बाप के मस्तक में क्या, बाप के नयनों में क्या, बाप के कर्मों में क्या, मस्तक में क्या, यादगार के रूप में कल्याणकारी बच्चों के, यादगार के रूप में मणि, नयनों में कल्याण की सर्च लाइट, बोल में भिन्न भिन्न युक्तियां कल्याण की, संकल्प में ओरिजिनल मुरली में क्या वाक्य है, ये इसमें थोड़ा कट कर दिया,
बाप के संकल्प में एक ही संकल्प,
बाप के संकल्प में सदैव एक ही संकल्प है कि बच्चों का कल्याण अभी अभी हो जाए, संकल्प में संकल्प,
खुशी में भी खुशी,
खुशी में खुशी भी बोलता है, संकल्प में संकल्प, साहित्य विलास
मस्तक तो है बच्चों का मस्तक
नहीं, वो खुद का बता रहा है। हाँ फिर उसके संकल्प में क्या, उसके बोल में क्या, उसके नयन में क्यों, आप नयन को स्वीकार कर लिए मस्तक को क्यों नहीं करते हो, पग बिना चले हुई चले, बिना पग चले सुनई बिनु काना कदई बिनी नाना, तो ये अगर है तो वो भी स्वीकार करो, वही तो कहा है ना, वो कौन है वो जान लिया है, पर उसके मन में क्या है, वो सोचता क्या है, उसके इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, जज्बात वो सब क्या है, उसको समझना है, इच्छा है चाहना है वो भी समझना बाकी है पूरी तरह से। रोज अलग अलग बताता है, यही तो है उसका, इसके लिए तो इतने कितने रहस्यवादियों ने उसके बारे में लिखा है, कितने दार्शनिकों ने उसके बारे में, कितने धार्मिक धर्मावलंबियों ने उसके बारे में क्या कुछ लिखा है, फिर भी वो 5000 साल में रहस्य बना हुआ है, वो आके बता रहा है अपने बारे में रोज, पर वो इतनी आसानी से भी नहीं बताता है ना, अलग अलग बताता है, भिन्न भिन्न बताता है। तो उसने अपने मन की स्थिति बताई, उसके मन में क्या, उसके बोध में क्या, उसके संकल्प में क्या, उसके दिल में क्या, वो सब कुछ बताया। तो आप बच्चों को भी क्या बनना है, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व की सारी आत्माएं इमर्ज रूप में सामने हो, इमर्ज हो हमारी आंखों के सामने। जैसे उदाहरण दिया कौन सा, कृष्ण का, विश्व का मालिक के हाथ में विश्व का गोला, विश्व कल्याणकारी बच्चों के मस्तक के समीप विश्व की सारी आत्माएं, जैसे दूर की आत्माएं चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं और हो, परंतु वो फिर भी समीप नजर आती है, शांति और शक्ति की रेज उन्हें देते हो, कल्याण की रोशनी उन्हें देते हो। फिर उदाहरण दिए और वापस, एक दो तीन, साइंस प्लेन से क्या करते हैं, समय को समीप ला लिया, फोन से क्या करते हैं,
बोल
शब्द आवाज, आवाज को समीप ला लिया, और टेलीविजन से दृश्य और व्यक्ति समीप आ गए, परंतु वो केवल उस फोन से तो केवल मुख का आवाज सुना जाता है, यहां तुम मन का आवाज सुनते हो, उस टीवी में केवल दृश्य, पर यहां मन के दुख अशांति के चित्र के दृश्य यहां तुम देख सकते हो। और मैंने कहा ना, आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं से बातें करो, आत्माओं से रू रियान करो, ये सारे कार्य हमारे कार्य है, श्रेष्ठतम कार्य। विश्व सेवाधारी अर्थात बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी स्थिति अर्थात जो विश्व की परिक्रमा लगाने वाले, विश्व सेवाधारी अर्थात जो देख रेख करे विश्व की, रेख देख बाबा के शब्द में रेख देख कहते हैं सिंधी, रेख देख करे विश्व की। जैसे उदाहरण देते राजा का, हमेशा एक अच्छा राजा होता है तो हमेशा प्रजा में गुप्त वेश धारण करके घूमते रहता है, कहीं कोई दुखी तो नहीं, असंतुष्ट तो नहीं, वैसे विश्व कल्याणकारी आत्मा आया था तो विश्व की रेख देख करे, विश्व की परिक्रमा लगाए, ये है विश्व कल्याणकारी आत्माओं की स्थिति। तो जैसे ये साधन है वो तुम्हारी क्या है, रचना, तुम हो मास्टर रचना। बाबा ने कभी कहा है साइलेंस की प्रत्यक्षता अर्थात पाप की प्रत्यक्षता, साइलेंस की शक्ति से ही साइंस की शक्ति निकली है, साइंस कभी साइलेंस से शक्तिशाली नहीं हो सकती, साइंस बदलते रहते हैं। हमारा जो मेडिसिन का किताब है हैरिसन, हर किताब में एक वाक्य लिखा रहता है, मेडिसिन इज एन एवर चेंजिंग साइंस, हर समय बदलता रहता है। 10 साल पहले जो गोली बहुत बढ़िया थी अभी बैन हो चुकी है, अभी उसका नाम निशान नहीं है कहीं, एकदम खराब गोली मानी जाती है अभी, जब वो आई थी तो परिवर्तन कर दिया उसने पूरा मेडिकल फील्ड को, रिवॉल्यूशन कर दिया, क्रांति आ गई उससे, आज वो गोली का नाम निशान नहीं है, एकदम ही खराब ऐसा माना जाता है, हर दिन चेंज हो रहा है, जो कल जो कॉन्सेप्ट थे वो आज चेंज हो रहे हैं, जो आज तक हम यूज कर रहे थे ये देना चाहिए वो आज अभी नई स्टडी आई है वो नहीं देना चाहिए, हर चीज में कॉन्ट्रोवर्सी, हर चीज में, तो वो सब चेंजिंग होते रहते हैं, ये शाश्वत है, इटर्नल। संपूर्ण साइंस अपूर्ण है, बाबा ने कहा है अभी कुछ दिन पहले कहा ना संडे में, अपूर्ण है वो, ये संपूर्ण है साइलेंस। ये करने के लिए क्या करोगे, कौन सा साधन है, साइलेंस, उसके लिए फिर वही दो बातें और, मन और मुख, और वो अगर कर दो तो विचित्र प्रमाण मिलेंगे, कौन से प्रमाण मिलेंगे तुमको, रूहानी रंगत, कौन सी है वो,
दूर बैठी आत्मा,
दूर बैठी, हाँ वो आत्माएं के मस्तक में, जैसे आपका दिव्य स्वरूप टीवी के स्वरूप में उनके मस्तक में दिखाई देगा, वो आएगी क्या कहेगी आकर, आपने मुझे बुलाया मैं आ गया, और
मुझे रास्ता बताया,
आपने मुझे सही रास्ता बताया, तीसरा और एक
तीसरा
इशारा दिया ठिकाने, ऐसे आके कहेंगी, ऐसे ही कहेगी जैसे कि पहले ब्रह्मा दूर बैठा हुआ ब्रह्मा, परंतु उसका दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार और उनका कहा यहां जाओ, तो वैसे अभी फिर होगा, ये अंत में होगा बाबा ने कहा। और उसके लिए भी क्या करो, मुरली चालू कहाँ से हुई और आ कहाँ गई, इसके लिए भी और एक चीज करो।
वो जो एक बात कही
ना, इसके लिए स्वतंत्र बनना पड़ेगा, निर्बंधन जो जो बंधन मुक्त है वही दूसरों को जीवन मुक्त बना सकता है। क्या कहा, कुछ कहा ना? तो जो बंधन मुक्त है, जो निर्बंधन है, जो शक्ति जैसे चाहो जब चाहो टाइम प्लेस कार्य में लगा सकते हो। तो शुरुआत की बाबा ने विश्व कल्याण करी और अपनी स्थिति बताई, फिर हमें क्या करना है वो बताया। अभी मंडे का वरदान था ना, विनाश लीला में सबसे ऊंची अवस्थिति होगी विश्व कल्याणकारी, विनाश की लीला में विश्व कल्याणकारी स्थिति सबसे ऊंची स्थिति होगी। हाँ, वो संबंध देह के संबंध पदार्थ प्रकृति की हलचल सब समाप्त। तो हमें कल्याण अर्थात क्या, कल्याण करना मतलब कल्याण हित करना, भलाई करना, हित करना, सबसे नजदीक के शब्द है ये, हित करना, कल्याण करना। पर हित समान क्या है, नहीं पुण्य भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास ने कहा है ना, पर दूसरों को पीड़ा देना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं, और दूसरों को सुख देना, दूसरों का हित करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है संसार का। तो हित करना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों के सुखों के लिए और बहुतों के हितों के लिए ये मार्ग है। तो ये है विश्व कल्याणकारी स्थिति, जिसमें हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना है, हर एक आत्मा के प्रति रहम दिल, चाहे कैसी भी आत्मा हो, हर एक के प्रति। लास्ट संडे था ना, मान किसको देना है, छोटा बड़ा, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत मायावश, अवगुणवान गुणवान, जो गुणवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे सबके लिए। तो यहाँ तो केवल मान देने की बात नहीं, यहाँ उनका कल्याण, उनके प्रति शुभ भावना। बाबा ने कभी कहा कम बुद्धि वाला हो, पत्थर बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला, ग्लानी करने वाला, अपमान करने वाला, निंदा करने वाला, कैसा भी हो, सबका कल्याण करना है। हाँ, सबका कल्याण करना है, कोई भी हो, क्योंकि सब एक बाप की संतान है। मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं, बाबा ने कहा एक बार। हाँ, मैं तुम बच्चों के लिए खास आया हूँ। विरोधाभास, विरोधाभास का समन्वय है वो, मैं इसको सुनाता हूँ तुम सुन लेते हो, और कभी आता है बाप तुमको सुनाने आते हैं मैं सुन लेता हूँ, वो शायद ब्रह्मा कह रहा है पर है तो मुरलियों में, वो चाहे कोई कोई भी कह रहा हो दोनों में से, पर है मुरलियों में, वो है तो मुरलियों में। तो ऐसी अवस्था, ऐसी साइलेंस पावर की रंगत आखिरी में होगी, बाबा ने कहा। तो साइलेंस पावर से ये सब चीजें होगी, सारा साक्षात्कार का जो पार्ट है सब साइलेंस पावर से होगा। बाबा ने यहां तक कहा है कि तुम्हें दूसरों के पुरुषार्थ की गति का पता चलेगा, दूसरों के मन में क्या संकल्प चल रहे वो तुम्हें पता चलेगा, ड्रामा और तुम्हारी तुम्हारे संकल्प पैरेलल हो जाएंगे, एक दीदी से एक पर्सनल मुलाकात है, अंत में ड्रामा में जो होने वाला है, तुम्हारे जो संकल्प है और ड्रामा में जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, तुम्हें वही संकल्प आएगा जो ड्रामा में होने वाला है, ऐसी स्थिति आएगी, हमें पता चल जाएगा आज ये होने वाला जो, जैसे बाबा हमेशा है अव्यक्तवाणी में, एक पुरानी एक अव्यक्तवाणी जिसमें ज्योतिषी का उदाहरण दिया है, उसको पता चल जाता है ग्रहों की स्थिति देख करके आपदा आने वाली है, तुम्हें भी पता चल जाएगा।
एक साल का कैलेंडर बना देते हैं पचान,
हाँ, फिर हर दिन क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला, सब पता चल जाता है, तो तुमको भी पता चल जाएगा। पर जिनको जितना बुद्धि स्पष्ट क्लियर हो, क्लीन क्लियर इंटेलेक्ट, वहीं पे वो पता चलेगा।
नहीं तो ड्रामा उसने लिख के रखा ना कितने साल पहले,
हाँ, वो सब उसने लिख के रखा, वो भी उसके पीछे भी एक राज यही है।
2000 तक
वो माया संस्कृति है, वो तो वो उनका संस्कृति समाप्त हो जाएगी,
मनुष्य का माता में कुछ नहीं
होता। वो तो है, पर उसने बहुत सारी जो चीजें कही है नॉस्ट्रेडेमस ने, वो भी सत्य निकली। उसने यहाँ तक लिखा हुआ है कि दो लोग اس کی مطلب دو لوگوں نے اس کی جو قبر ہے اس کو کھودا, کھودا پورا نکالا, اور جب کھودا نکالا تو وہاں پہ ایک پتر تھا, مطلب کہ اس میں لکھا تھا اسی ڈیٹ اور تاریخ اور دو لوگوں کے نام جنہوں نے وہ کھودا, کہ میری خبروں کو یہ یہ تاریخ کو یہ یہ ٹائم پہ یہ دو لوگ کھودیں گے. تو انہوں نے اپنے نام کو دیکھا ادھر دونوں نے. یہاں تک ہے وہ, مطلب کتنا ایکیوریسی تھا اس میں. اس نے جتنے گھٹنائیں بتائی ہے ساری ہوئی ہے آج تک ساری. امریکہ کا پریسیڈنٹ کو مارا جائے گا, اس کو یہ ہوگا, اس کو وہ ہوگا, جو بھی بڑی بڑی گھٹنائیں سنسار کی وہ ساری کچھ بتائی. ہاں سانکیتک روپ میں, ڈائریکٹ ڈائریکٹ کچھ ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں لکھا اس نے. وہ بھاشا بھی تھوڑی کوڈ لینگویج تھی. اس کی اپنی کہانی ہے کچھ, اس کا اپنا پارٹ ہوگا کچھ.
ایک سپتاہ پہلے میں نے بتا دیا کہ ایک سپتاہ کے بعد گاندھی جی کی ہتیا ہوگی.
ہاں وہ تو ان کو بھی تھوڑا سا اس کا آئیڈیا آ گیا تھا. جتنے بھی مہان آتما ہے ان کو تھوڑا سا پتا چل جاتا ہے. ہاں جانے والا ایسے جتنی ایون ویویکانند کا دیکھو, ایک مہینے سے دو تاریخ کو 2 جنوری اس کی ڈیتھ ہے 1902. 15 دن پہلے سے وہ پنچانگ لے کے بیٹھا اور جیسے ڈھونڈ رہا ہے میں کون سے دن جاؤں. ابھی اس کی عمر ہی کتنی 38, بس 10 سال میں جو کچھ کرنا ہے کر دیا. 28 سال سے جیون کاریہ چالو ہوا, 28 سماپت, 10 ایئرس وشو کو ہلا دیا. ہاں مطلب یہ جتنی آتمائیں ہیں سنسار کی مہانتم آتمائیں, انہیں پہلے ہی آبھاس ہو جاتا ہے کہ ہم جائیں گے یہ یہ تاریخ. وہ بھی ہے پر جتنی جیسے مہاراشٹر میں دکھایا جانیشور وہ کتنی اس کی آئی 21, کم آیو میں چھوٹا سا کاریہ, جو بھی کاریہ کرنا تھا کرو اور چلو. ہاں وہ سب ہی ہے. ابھی بابا نے وردان بھی تھا نا اچھا سندھ اس کی, جو باپ کی یاد میں اور جو اشریری ہے جو وائس لیس ہے ان کا وناش وناش نہیں کرے گا وہ اچھا سے سوچھا سے شریر کو چھوڑیں گے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. ارے چاہتا ہے ہاں وہ تو ہے, تو اس سے یہ نہیں کہا سب میں یہ لاگو نہیں ہوتا ہے. کاریہ کیا ہے جیون کا, وہ جتنا کاریہ تھا اتنا کر دیا, اتنا انف ہے. ہاں ساکشاتکار ہوں گے پھر اس کے لیے بھی کیا چاہیے, سوتنتر نربندن, تو دوسروں کو بندھن مکت کر سکیں. یہاں پورا کیا پھر مہاراشٹر سے بات کی, مہان آتماؤں کا راشٹر, راشٹر ارتا ستھان, ستھان تو جیسا ستھان, ستھان مہان, ستھی مہان, سنکلپ مہان, بول مہان, کرم مہان, سب مہان. مہان ارتھات پرستھتی میں سمسیا سماپت, پرستھتی تو آئے گی جس کو دیکھے وہ مہان بن جائے.
ایک پیراگراف میں 6 بار بابا جی بولا
مہاراشٹر کو 79. پھر ٹیچر سے ملاقات, ٹیچر سے کیا کہا بابا نے,
ٹیچر کمپلیٹ
نہیں وہ تو اچھا لاسٹ میں چلے گئے. ہاں ٹیچر کا ہی مہان بننے, ٹیچرس کا مہتو تب ہے جب وہ مہان بنے, کس میں, سنکل بول کرم سمبند سمپرک. آپ لاسٹ سنڈے میں چلے گئے, لاسٹ سنڈے کے بھی لاسٹ سنڈے میں, وہ بھی اچھا ہے کسی کی کمی نہ دیکھے. اگر وہ بھی دیکھے تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں انتر کیا, ٹیچر ارتھات نہ کمی دیکھے, اگر دیکھے تو چت پر نہ رکھے نہ اس کا ورنن کرے, اس کے مکھ سے سدے وہ سب کی وشیشتاؤں کا ہی ورنن ہو. اچھا وہ کمپلیٹ بنانے والی ہے بابا نے کہا, تو کمپلین کہاں سے کرے گی, اگر کمپلیٹ بنانے والی کمپلین کریں گے تو کیا کہیں گے, تو کمپلین نہیں. کون کون سی کمپلین بتائی, 4 کمپلین بتائی. پہلی سنجے بھائی کمپلین ٹیچرس کی, میں کمزور ہوں, مایا آتی ہے, جگیاسو سنتوشت نہیں ہوتے, میں سنتوشت نہیں ہوتی. جو بہن ٹیچر بہن ایسا کہتی ہے کہ میں دوسروں کو سنتوشت نہیں کر سکتی وہ ٹیچر کی یوگیتا کے ورودھ ہے. ہاں بابا کو اچھا نہیں لگتا, کمپلینٹس اسے پسند نہیں ہے. یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا ایسا ہوا ویسا ہوا, اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, ایسے ہو رہا ہے, کیا کمپلین کرنا ہے اور کس کی کمپلین کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس سے کچھ پراپتی. یہ کیول بابا کی بات نہیں ہے, جو اپنے جو پرٹیکولر انچارجز ہیں جس کے جس کے ان کو بھی کیا ہے. ہاں کون ٹیچر ہے سبھی ٹیچرس ہیں. ہاں یہ جو بات ہے نا کمپلین والی, بار بار جانا یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا, کیا جانا ہے جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کرو تم خود. عادت بھی پڑ جاتی ہے اور آگے والا سنتا بھی نہیں ہے, ان کو لگتا ہے ان کی عادت ہی ہے. تو میں کمزور ہوں, میرے سے ہوتا نہیں ہے, میں کر نہیں سکتی, میں اکیلی کیسی رہوں گی, اندھیرا, یہ ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں. ہاں دل ہول دل شکست, تو یہ سب باتیں ڈپریسنگ ہیں. نربھے بننے کے لیے بابا نے کہا ہے میں کمزور ہوں, مایا آتی ہے, یہ کہنا بھی اچھا نہیں, سننا اچھا نہیں لگتا. بابا اتنے بڑے بڑے سامان دیے, مایا جیت ہو تم, سامانداری ہو, تمہارا ڈریس کیا ہے, تمہارا بیلٹ کیا ہے. مایا جیت سامانداری آتماؤں کا ڈریس بتایا نا اس دن, ٹائٹلس ہی تمہارا ڈریس ہے, اور پانچ ادھر اور پانچ ادھر, پانچ تتو اور پانچ وکار تمہارے ڈریس کو پیچھے سے اٹھاتے ہیں. بیلٹ ہے دڑ سنکل, ایسے بڑے بڑے سامان دیے, ایسے بڑے بڑے ٹائٹل دیے, اور اس کے بعد میں کہتے ہو مایا آتی ہے. ہاں کون پیچھے جاتا ہے, ٹائٹل پیچھے, ٹائٹل پیچھے چلا جاتا ہے. ٹیچرس کو کبھی بابا نے اور ایک چیز بہت اچھی چیز کہی ہے, ایک کہ ٹیچرس اگر پریار سے سیوا نہ کرے تو سفلتا نہیں ملے گی, پر ٹیچرس یعنی پیار میں پھنس کر سیوا کرے تو بھی سفلتا نہیں ملے گی. دونوں چیزیں کہیے, اگر پیار سے سیوا نہیں کرتے تو سفلتا نہیں ملے گی, اگر ٹیچر پیار میں پھنس کر سیوا کرتی ہے تو بھی سفلتا نہیں ملے گی. جو بھی واقعہ کبھی بابا نے ٹیچر انچارج کے لیے کہا ہوا ہے, جو آتما جو ٹیچر انچارج سوئم کی آتما کو جس نے چارج نہیں کیا ہے ان پر چارج لگے گا. ایک ہی چارج کے تین ارتھ ہیں, پہلا ہے چارجنگ آتما کی بیٹری چارج, دوسرا انچارج ہیڈ ڈیوٹی, تیسرا چارج لگنا مطلب دوش آروپ فائن. ایک ہی واقعے میں تین بار چارج اور تینوں چارج کا الگ الگ ارتھ. بھاشا ولاس ہولی کے تو وہ تو ہمیشہ بتاتے ہیں, یہ شبد ہاں مطلب وہ بھی ہے. ویسے یہ رائلٹی کا ایک ارتھ دنڈ بھی ہوتا ہے, انہیں تو رائلٹی ملے گی, دنڈ لگے گا. الگ 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 ایسے ایسے گول گول گھماتا ہے شبدوں کے ساتھ. تو ٹیچرس کو کیا کہا بابا نے, مہان ان کا مہتو تب ہے جب وہ مہان ہوں گی, کس میں, سمبندھ منسا واچا کرمنا سمبندھ سمپر میں. اس کے مہان بننے کے پانچ سادھن ہیں, کون کون سے, واتاورن سنگ شدھ ان سیوا سمبندھ سمپر. اور وہ تو ہے ہی نیاری, ان کو نیارا بننے کی ضرورت نہیں. بابا نے کہا نیارے تو وہ بنتے ہیں گرہستھی, ان کی تو کمال ہے جو دونوں ساتھ میں ہنس بگلے ساتھ میں رہ کے نیارے رہتے, تم کو تو ضرورت ہی نہیں. نربندھن ہے من کے بندھن, یہ شریر کا بندھن, شریر کی گرہستھی ہے, وہ گرہستھی تو نہیں ہے, یہ شریر کی گرہستھی ہے.
جن والے ان کے فادر پہلے گیان میں چلے, گھر میں جاتا تھا جب فادر کی مرلی سن کے تو کہتا, فادر مجھے کہتا تھا یہ دیکھ تمہارے گھر میں بگلا جنم ہوا, مجھے برا لگتا تھا لیکن بادر میں کیا کہوں.
تو सबसे पहला साधन है वातावरण। ये जो वातावरण है, अच्छा बाबा तो सेंटर की बहनों के लिए सेंटर के वातावरण पर, ये तो महासेंटर है, ये वातावरण सर्वश्रेष्ठ वातावरण है। इसको इसका पूरा यूटिलाइज करना है, इस वातावरण को अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए। संघ, ऐसा संघ और कहीं नहीं है संसार में। सेंटरों में अगर कोई कुमारों की मीटिंग करनी है तो एक रहेगी कभी तो भी, कितने महीनों के बाद, सब ड्यूटी पे, सबके अपना अपना कुछ कुछ, बहुत मुश्किल है। ज्ञान की चर्चा करने के लिए ज्ञान सभा मुश्किल है संसार में। वातावरण, संघ, शुद्ध भोजन, फिर सेवा। सेवा साधन है महान बनने का, कितनी बड़ी बात कही। सेवा ही साधन है महान बनने का।
बिजी रहना सीख लिया वो तो माया
है। हाँ, तो उसमें बिजी रखना है स्वयं को, वो भी है। बाबा ने दो सब चीजें कही है इसके लिए, तो सेवा, परंतु सेवा एक साधन है महान बनने का। अगर कोई सच्चे दिल से करता है सेवा और जैसी श्रीमत मिली उस अनुसार करता है तो वो महान बन सकता है सेवा से। और फिर है लास्ट में कॉन्टेक्ट रिलेशंस, संबंध संपर्क। पर ये होते हुए भी मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, क्योंकि बिजी नहीं रहते। बिजी रहना है किसमें? बिजी तीन चीजें में, पहला पढ़ाई, दूसरा पहला मनसा का चार्ट, मनसा की दिनचर्या। ये सबसे बड़ा कार्य जो करना है हम बाकी सब करते, ये नहीं करते बस, क्योंकि कठिन कार्य है। हम बाकी दिनचर्या तो सेट करते, यहां से इतने बजे तक योग, उतने बजे तक वो, उतने बजे तक वो, इतने बजे तक ये। पर मन की दिनचर्या सेट करना, मन कौन कौन से सोमान में रहे, ये कार्य करते समय, और वो भूले तो उसे वापस याद दिलाना। तो मन की दिनचर्या सबसे पहला। दूसरा पढ़ाई से प्यार,
दिल का प्यार,
वो भी दिल का प्रीत हो, तो फिर स्वयं भी बिजी रहेंगे और दूसरों को बिजी रख सकेंगे। सेंटर की बहनी, स्वयं भी विघ्न विनाशक तो दूसरों को भी विघ्न विनाशक। तो मुरली से प्यार, मुरलिया तो बहुत सुन ली, वरदान था ना, मुरलिया बहुत सुन ली, अब मुरलीधर बनो, सब माया सरेंडर होंगी। मुरली के राग का साज बजाते रहो तो माया संपूर्ण सरेंडर होगी, नहीं तो नहीं होगी। मुरली के राग का साज बजाते रहो तो पढ़ाई से प्यार, दिल का प्यार बोली बाबा ने कहा। और तीसरा साधन प्लानिंग बुद्धि। ऐसे नहीं कि डायरेक्शन प्रमाण, जो डायरेक्शन मिले वो करेंगे, डायरेक्शन ही है क्या? प्लानिंग बुद्धि बनो, डायरेक्शन ही मिला हुआ है तुमको, प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग करनी है, पुरुषार्थ की प्लानिंग, ज्ञान की प्लानिंग, योग की प्लानिंग, दिनचर्या की प्लानिंग, हफ्ते हफ्ते की प्लानिंग, दो हफ्ते की प्लानिंग, एक महीने की प्लानिंग। कौन सा ऐसा संस्कार है जो अब तक नहीं गया? कौन सा ऐसा संस्कार है जो अब तक चल रहा है सूक्ष्म में, जिसकी खबर केवल हमें है, दूसरों को नहीं? ऐसा वो कौन सा संस्कार है जिसके वजह से पुरुषार्थ रुका हुआ है? ऐसी वो कौन सी वासना है, कौन सा वो संस्कार है, कौन सी वो इच्छा है, कौन सा वो आकर्षण है जो अब तक है, जो केवल मौके की तलाश में बैठा हुआ है? ऐसा लगता है विलीन हो गया है, परंतु बीच बीच में निकलता है बाहर, प्रकट होता है। प्रकट हो रहा है मतलब वो गया नहीं है, भस्म नहीं किया है, वंश उसका अंश है अभी भी, वो दबा के रखा हुआ है, प्रतीक्षा है उसे अवसर की, खोज में है वो, बस वो निकला कि गिरा देता है। फिर
कोई संस्कार छोड़ने के बाद भी फिर अगर कोई आता है तो उसे भी थोड़ा सा संकल्प है कि उसको हमने छोड़ दिया है,
वो भी नहीं आना चाहिए वो, परंतु हमें मतलब वो जब हमारी अवस्था बहुत अच्छी है उस अवस्था में ही उसका चिंतन कर उसको समाप्त करना है। हम क्या करते, वो एकदम दब जाता है, फिर हम सोचना बंद कर देते उसके बारे में, लंबा समय सोचते ही नहीं, और अचानक उसको कोई ट्रिगर मिलता है तो वो बाहर आता है और वो एक दिन गिरा देता है और फिर सोचना चालू करते हैं, पर फिर भी पूरा नहीं सोच पाते। वो संस्कार है क्या, वो क्यों आता है, कहां से आता है, उसके ट्रिगर्स क्या क्या है? क्योंकि वो संस्कार अज्ञान काल में भी था, और ज्ञान मिलते ही वो दब गया। अभी क्या, वो निकलेगा बाहर, और बाहर जब निकलेगा तो हमारे वश में नहीं रहेगा फिर। हाँ, वो बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया, फिर बाप से कहते हैं क्षमा करो, माफी क्षमा काहे की, साकार महावाक्य एक सब क्षमा काहे की साकार महावाक्य। तो ये चेकिंग करनी है। ऐसा कुछ है कि जो गिराता है, ऐसा कौन सा वो संस्कार अब तक रहा हुआ है? अगर रहा हुआ है, हाँ ये है, भले अभी उसको कोई ट्रिगर नहीं है, परंतु वो कब निकलता है? जब यहां से लौकिक घर में गए, यहां के वहां तो कई लोग मधुबन में जब रहते हैं स्थिति बहुत अच्छी रहती है, जैसे यहां से बाहर गए दो दिन के लिए बस स्थिति गिरी। कोई बड़े शहर में चले जाओ, वहां मार्केट में घूमो, इधर उधर नजर गई कि इधर का विलीन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। एक भाई नीचे था शांतिवन में, बहुत अच्छा पुरुषार्थी भाई है, वो अपना अनुभव बता रहा था कि मतलब 20 साल से तो घर ही नहीं गया, जब एक बार गया एक ही हफ्ते के लिए गया, वो भी घर नहीं गया, सेंटर पर ही रुका और किया सेवा ही इधर उधर, फिर भी कहता है कि 7 दिन के बाद मेरी जो अवस्था थी जाने से पहले अब वो नहीं है, नीचे आ गए। मतलब उसने कितनी सूक्ष्म चेकिंग की है अपनी, जाने से पहले 20 साल तो गया ही नहीं, और गया तो भी घर नहीं रुका, सेंटर पर रुका और यहां वहां घुमा, वो भी क्लासेस ही कराए, परंतु वो जो अवस्था है वो थोड़ी नीचे आ गई, क्योंकि वातावरण का प्रभाव चालू हो जाता है। कितना भी कोई कुछ कहे, यहां से नीचे उतरते ही वो स्टेशन जैसे क्रॉस होता है आबू रोड, वहां से माया का साम्राज्य सतयुग त्रेता द्वापर, वहां से आगे कलयुग स्टार्ट हो जाता है। वहां की वहां रही, फिर वहां का प्रभाव सूक्ष्म चालू होता है। हमको यहां बैठकर यह अभ्यास करना है कि वहां अगर हम चले गए तो वहां हमारी स्थिति कैसी शक्तिशाली, ये चिंतन हमारा नहीं होता। वो अगर हम गिर गए तो वहां वो हम न गिरे,
हम तो फ्रेश होने के लिए जाते हैं।
आत्मा फ्रेश केवल तपस्या से ही हो सकती है। विजडम इज द स्लीप दैट साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम, मौन वो नींद है जिससे विवेक रिफ्रेश होता है। आत्मा कहीं घूमने से कभी रिफ्रेश नहीं हो सकती, आत्मा का कभी पेट खान पान से भर नहीं सकता। द्वापर युग से खाते ही आ रहे, आज तक किसी का पेट भरा है क्या? भरा है किसी का पेट? रोज नई नई चीजें, अलग अलग आइटम खाओ सुबह से शाम तक, फिर भी दूसरे दिन भूख लगती है, शनि के 12 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद वही अवस्था है। क्या खाया था पता ही नहीं, बस यहां तक है, इसको अंदर से कुछ पता ही नहीं क्या है।
पिछले बोला और एक पेट होता था तो कितना अच्छा,
वो एक भी मिल गया 10 भी मिल जाए तो भी अतृप्त ही रहेगी आत्मा। और ययाति राजा की कहानी है ना, ययाति 100 पुत्र रहते हैं उसके, भोगी विलासी राजा, पहले एक अपने पुत्रों को कहता है कि तेरा यौवन मुझे दे दे, पुत्र मर जाता है दे देता है, ऐसे 100 चले जाते हैं, फिर भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं रहती। शास्त्रों में कहानी दिखाई है ययाति की, फिर उसको पता चलता है व्यर्थ है ये सब भोग, इससे कभी कुछ नहीं हो सकता है, भोग कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, वो और बढ़ती है इच्छा। जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि भाई एक बार जितना खाना है खा लो बस, बाकी फिर इच्छा नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। अभी खाएगा ना तो वापस और खाने की इच्छा होगी, वो एक बार खा के छोड़ा नहीं जा सकता है कुछ, वो संस्कार बन रहा है वहां पर। भोग लो जितना भोग लो, बाद में नहीं करेंगे, बाद में तो वैरागी है बस, जीवन ही वैरागी है, ऐसा नहीं है। संस्कार क्रिएट होते हैं नए नए, भोग के संस्कार क्रिएट होते हैं आत्मा में, तो वहां वैराग के संस्कार क्रिएट करने हैं ना, ये सबसे तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। तब तक योगी जीवन की शुरुआत ही नहीं है। जब तक आत्मा वश है किसी भी चीज की, तो प्लानिंग बुद्धि पे थे हम, हर चीज की प्लानिंग करनी, कौन सा संस्कार है सबसे पहले तो वो ढूंढना चालू करना, ऐसी कौन सी बात है जो योग में अनुभव ही नहीं करने देती है वो आ जाती है बीच में, ऐसी कौन सी यादें हैं वो यादें कौन कौन सी है, ऐसे कौन से भोग हैं जो अज्ञान काल में भोगे हैं जिनकी स्मृति अब तक भी है, ऐसा लगता है कि वो अगर मिल जाए तो उसको वापस भोग लो, वो चाहे काम भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है।
पानी पूरी
वो कुछ भी हो सकता है। खाने पाने का तो बहुत बड़ा साम्राज्य है,
यहाँ एक सी बनती है।
वो एक ही संस्कार, बाबा ने कहा चार चीजें अटैक करेगी अंत में। सबसे पहले तो पांच विकार, पांच तत्व, भूत प्रेत आत्माएं और तुम्हारे पुराने संस्कार, ये फोर्थ चीज। चलो तत्वों से बच गए, ये विकारों से बच गए, कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं की, पर जो पांच जो संस्कार है, वो जो कमजोर संस्कार जो रह गया था और हमने उसको छोड़ दिया था, वही वापस आएगा बाहर, वही आके खलास कर देगा हमको। पूरा ज्ञान योग रह गया एक तरफ, केवल नाम मात्र योगी थे बस। ऐसा अनुभव होगा तो कितना खराब लगेगा। तो कोई भी संस्कार नहीं रहे, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा क्या क्या रह गए हैं। पहले तो अज्ञान काल से चालू करो, अज्ञान काल में जो थे वो अभी है। अज्ञान काल में इच्छा थी बहुत घूमने फिरने की, इधर आ गए तो बस यहीं रह गए। अभी वापस प्रकट हो रही है 10 साल के बाद, कहां जाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, खाना पीना और घूमना, ये तो मुख्य है, वो कम है, इतना नहीं है। पर जो भी इच्छाएं बची हुई है, जिसको दमन किया हुआ है, दमित इच्छाएं, वो प्रकट होगी, ये भूलना नहीं है, क्योंकि उसको दबाया हुआ है। दबाई हुई चीज निकलेगी एक दिन सुनामी की तरह, सब डुबो देगी, कुछ नहीं बचेगा। वो कौन सी इच्छा है, वो कौन सी वासना है, उसकी जो तीव्रता होगी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इतने समय से उसको दबा के रखा है, प्रचंड शक्ति के साथ बाहर प्रकट होगी। इसके लिए जब स्थिति बहुत अच्छी है उस समय उसके बारे में सोचना है कि क्या वो भी है, अपने मन को सिखाना है कि उसका क्या किया जाए, कैसे उससे मुक्त हो जाए, हुआ जाए, और सोचना है उसके बारे में, और जानकारी प्राप्त करनी है कैसे उससे मुक्त हो, तो ये वाली बात। फिर बाबा ने बात की किससे, पार्टियों से मुलाकात, क्या कहा उनको, भाग्य का स्मरण कराया, बाप वर्षा पढ़ाई और घर, तीन संबंध, तीन प्राप्तियां। तो कभी सोचा नहीं होगा कि परमात्मा तीन संबंधों के, सर्व संबंधों से मिलेगा, तुमको मिल गया। भक्ति में कहते हैं भगवान देता है तो चक्कर फाड़ के, और ये पांचों तत्वों को फाड़ कर पार कर, तो पांचों आकाश तत्व से परे रहने वाला, पांचों तत्व को पार कर सर्व प्राप्तियां कराने आए हैं तुमको। और एक उदाहरण दिया प्रैक्टिकल लाइफ, तो ये सदा याद रहे, भाग्य सदा याद रहे। ये याद नहीं रहता क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ नहीं बनाया, जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो कभी भूलता नहीं। जैसे पास्ट का जीवन है तो कभी भूलता है किसको, नहीं भूलता है। बाबा ने कहा 5 साल के जब थे तुम तब से याद रहता है, उल्लियों में आए ना, 5 साल का जब तक है, कोई कोई को 3 साल का भी याद आएगा, पर इन जनरल 5 साल, वो तो सभी याद याद तो, पर इन जनरल 5 साल से स्मृति रहती है, क्या क्या पाप किए, अभी मुरली में था ना, इसको भी याद है इसने क्या क्या पाप किए, पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो जैसे वो नेचुरल है वैसे ये नेचुरल हो जाए, याद और ये भाग्य की स्मृति, प्रैक्टिकल लाइफ हो जाए। और एक उदाहरण दिया, और एक कौन सा उदाहरण दिया, बच्चे का उदाहरण दिया ना, 2 साल का बच्चा बाबा बाबा कहते रहता है, बाबा बाबा कहते कहते स्मृति स्वरूप हो जाओ। जैसे बाबा, तुम तो नॉलेजफुल के बच्चे हो तो तुमको क्यों भूलता है बाबा शब्द, एक बाप दूसरा मैं तीसरा ना कोई। फिर शक्तियों से मुलाकात की, क्या कहा शक्तियों को, निर्मोही, घर में बच्चों में मोह तो नहीं है, साक्षी स्थिति, हर सीन को देखते हुए नंबर वन आएगा, निर्मोही होगा। तो लास्ट में पांडव से मुलाकात, क्या कहा, पावरफुल बात है ये तो। क्रोध और रोग, लास्ट संडे भी था ना, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए था, हिसाब किताब है, कर्म भोग है, ये सब रोग के अंश है,
भोग नहीं चाहिए।
तो कोई ग्लानी करे तो क्या करो, गले लगा। निंदा करे उसको क्या कहो,
मन से
मुख से नहीं, मन से। सबसे कठिन काम है निंदक को गले लगाना, और अपकारी पर उपकार। उपकारी पर उपकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपकारी पर उपकार करना। क्रोध के दो कारण बताए, कौन कौन से?
झूठ बोलना,
कोई अगर झूठ बोलता है तो, या तो इल्जाम लगाता है, या ग्लानी करता है। यहाँ ग्लानी इल्जाम भी बोला एक जगह। तो अगर कोई दूसरा झूठ बोल रहा है तो, और उससे भी बड़ा इल्जाम आरोप, तुमने ये किया सबके सामने, अकेले में नहीं सबके सामने। अगर कोई बोल दे तुमने ये किया तो क्या कहेंगे, बुरा लगता है?
उसको पुरानी बातें याद आ जाएंगी, इतना अभिमान है।
हम कई सालों से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एक दिन बीमार पड़े और हमारा इंचार्ज आकर अगर कह दे अगर होता नहीं है तो घर जाओ, तो ऐसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है?
कौन बोले जमीन किसकी
जाती है? बुरे लगने वाली बहुत सारी बातें इस तरह की। कोई माता है सेवा करे, हाँ बता रहा हूँ एग्जाम्पल। सब कुछ सुनने के लिए तैयार चाहिए आपको। परीक्षा है, पेपर है, पाठ पढ़ो, कभी भी एग्जाम आ सकती है आधी रात को, टाइम नहीं है उसको, डेट नहीं है। प्रश्न है पता है, अष्टमोह और अचरडोल स्थिति, ये है उत्तर। कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, लौकिक अलौकिक दोनों तरफ से नई परिस्थितियां खड़ी हो सकती है। जो लौकिक वाले अब तक शांत बैठे थे, अचानक वहां से कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो अलौकिक में सब कुछ ठीक था, अचानक मित्र शत्रु, शत्रु मित्र बन जाएंगे, सब कुछ हो सकता है। इसके लिए अंदर पावर चाहिए, पावर ने कहा साइलेंस पावर, जमा करके रखो, और वो जमा होगी जब कोई परिस्थितियां नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तभी करना है। तब अगर अलबेले हो गए, कुछ और कर रहे ज्ञान योग के अतिरिक्त, तो वो समय गया। फिर परिस्थिति आएंगी तो जमा नहीं है, फिर स्वयं को स्थिर नहीं कर सकेंगे।
बाबा
तो कब एकदम संपूर्ण साक्षी भाव धारण करता है, उसने खड़े कर रखे ना, ड्रामा एक माया और ये कुदरत, मुझे कुछ मत पूछो। एक्टिविटी हो सब, क्योंकि स्थिति में आत्मा गिर जाती है नीचे, उसका कनेक्शन ही नहीं रहता है बाप के साथ। वो याद करने की कोशिश करे तो भी उठ नहीं सकती, वहां केवल भक्ति रह जाती है बस। कृपा दया आशीर्वाद करो, मदद करो। योग भी जो किया जाता है वो परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए योग किया जा सकता है। वो जो बातें हैं विश्व कल्याणकारी, आत्माओं को हिम्मत करो, कल्याण करो, वो सब नहीं है इसमें। वो तो पूरा इतना नीचे गिर जाती है आत्मा। इसके लिए जब समय है, जब कोई परिस्थितियां नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी अपने अंदर शक्तियां भरनी है, ज्ञान भी तभी अपने अंदर भरना है। क्योंकि परिस्थितियों में ज्ञान कहां से पड़ेंगे, तब कब याद करोगे, तब कहां चिंतन करने का मौका मिलेगा? अगर नेपाल में अभी कोई है वहां चिंतन कर ज्ञान कर सकता है? वो सब किसी का घर गिर गया है कहां चिंतन करेगा, जिनको हर डर के मारे बाहर सोते हैं लोग, डर के मारे बाहर सोते हैं, घर में भी नहीं सोते। तो फिर आज हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ, आर्मी का, नेपाल से आया, तो रहता इधर है आर्मी में, पर उसके माता पिता घर सब कुछ उधर है, तो वो उधर गया था मिलने, सब कुछ खत्म हो गया, मतलब घर पूरा गिर गया। माँ बाप है, अपनी पत्नी है, कौन बहन है, उसको लेकर वो इधर आया, तो बीमार है अभी, तो सीधा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, पर उधर हालत बहुत खराब है, उनको भी लेके आना है। पर लाए कैसे, वो सब जितना घर था सबके सब चला गया। तो सब कुछ कर सकेंगे ज्ञान वहां, तो फिर आपदा ये सब आने के बाद में कुछ और चीजों में बुद्धि लगी रहती है, स्वयं को बचाने में, आरोप प्रत्यारोप ये सब भी होगा, हमारे घर का तुमने ये चुराया वो चुराया, ये सब वो अलग बात है, और ये सब ज्यादा चालू होगा, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर बनाओ, इधर भागो उधर भागो, वहां ज्ञान योग कहाँ हो सकता है, मुश्किल है। तबियत का तो पूछो ही मैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी को, चलते फिरते जो लोग रहते हैं वो, एक महाराज थे यहाँ के जैन मुनि, सुबह आए ओपीडी में, कुछ तकलीफ कुछ भी नहीं, सब ठीक है, जनरल चेकअप कराना है, जनरल चेकअप किया, सारा कुछ किया, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल, सब कुछ, कोई तकलीफ भी नहीं और सारा कुछ नॉर्मल, घर गए रात को 12 बजे हार्ट अटैक के साथ आईसीयू में। अभी अभी दर्द चालू हुआ 15 मिनट से, और देखा तो हार्ट अटैक, और आज सुबह ही सारा कुछ हो गया, कुछ भी नहीं उसमें, सब नॉर्मल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति ये जो है बीमारियां कुछ बता के थोड़ी आती है, नहीं वो बच गया, हार्ट अटैक हुआ, सब ट्रीटमेंट हुआ, फिर घर गया, बच गया, पर कुछ भी हो सकता है अचानक, कोई भी किसी को भी बीमारी तो ऐसी चीज है कि कुछ उसका यही नहीं है, किसको भी कोई भी बीमारी हो सकती है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ ये है, कोई भी बीमारी बता के नहीं आती है अचानक। हाँ वो भी एक दूसरे कारण है बीमारियों के, पर कुछ बीमारी ऐसी है जो सडनली भी होती है, पता चलता है जाने का हमारा जो समय है, जो स्टेशन का हमको पता नहीं, वो ट्रेन का नंबर पता नहीं, ट्रेन का नाम पता नहीं, और टिकट भी हाथ में नहीं है, जाना है पर सबको, जब जाना होगा स्टेशन सामने होगा, टिकट हाथ में दी जाएगी, तारीख और डेट और ट्रेन का नाम भी, कैसे कौन से ट्रेन से जाना है, जाना कहाँ है वो पता है, पर टिकट अभी नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता, वो कभी भी हो सकता है, आज रात भी हो सकती है, कितने पेशेंट ऐसे है कि रात में सोते दूसरे दिन उठते ही नहीं, ऐसे होते कई लोग, और कई तो अभी इस समय माउंट आबू में कम से कम 10-12 लोग ऐसे है, टाइम बॉम्ब, कभी भी जा सकते, पर वो जा मतलब है अभी भी। इतना मतलब हालत खराब है पर फिर भी ठीक चल रहा है, और बाकी जो ठीक है वो चले जाते। वो अभी भी चल रहे है, किसी का हार्ट का पंपिंग खाली, एक भाई इधर है वो मार्केट में, एक दादा उसका पंपिंग खाली 10% है हार्ट का, ईसीजी में इतने भयंकर चेंजेस है, देखे कोई तो बोले अभी एडमिट करो इसको, वो बोले मेरा 10 साल से ऐसा ही है। और चल रहा है, एडमिट तो होना नहीं है, जो करना है दवाई दे दो बस, अभी तक चल रहा हूँ और चलूंगा। वो कभी भी जा सकता है, कभी भी, ऐसे कम से कम 10 से 12 लोग है एट प्रेजेंट माउंट में जो कभी भी जा सकते हैं, उनको बोल के रखा है मैंने, अगर कुछ हुआ तो लाना मत। ऊपर जाते नहीं। वो चालू ही है, और उनके जो रिश्तेदार है जो ठीक है, जो उनकी देखभाल करने वाले वो चले जाते। आश्चर्य है सब, तो मृत्यु, बीमारी, आपदा सब अचानक होगा, कुछ भरोसा नहीं है। इसके लिए समय जब है, समय रहते स्थिति को शक्तिशाली बनाना, समय रहते ज्ञान का अध्ययन, मनन, चिंतन, और ज्ञान की हमारी जो स्थिति है वो शक्तिशाली हो, क्योंकि परिस्थितियों में वैसे भी कुछ याद नहीं आएगा, फिर अभी याद नहीं आता तब क्या याद आएगा, ना तो ज्ञान ना तो बाबा, वो केवल भक्ति का स्वरूप रह जाएगा, मदद करो, वो मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति नहीं होगी, केवल भक्त होंगे हम, शिव बाबा के भक्त, बाबा ये दे दो, ये कर दो, ये ऐसा करो, ये वैसा हुआ वैसा हुआ, काली वो रूरियान होगी, योग नहीं होगा, अशरीरी अवस्था नहीं होगी वो, हाँ मतलब ऐसी जब मतलब अभी आपदा आई है तो वो पुकार रहे हैं उसको, वो स्वरूप बाबा को पसंद ही नहीं है। और क्या कहा आज, और कोई पॉइंट है? हो गया ना यहाँ पूरा
कम्प्लेन कम्प्लीट।
हाँ वो टीचर्स का ही कम्प्लेन कम्प्लीट। यही कमाल है,
सभी प्रसिद्ध होंगे
वो महाराष्ट्र का कमाल है, यही परिवर्तन है, सभी प्रसिद्ध होंगे। तो ये सब बड़े बड़े कार्य, अगर पूरे मुरली में देखे जाए तो आत्माओं को इमर्ज करना, उनको सुख शांति की सुख शक्ति शांति की रेस देना, आत्माओं के रूरियान बातें, स्थिति अचल अडोल, स्वतंत्र रहना, कंप्लीट बनना, कंप्लेंट ना करना, और एक चीज दर्पण कैसा हो, स्पष्ट और पावरफुल। टीचर्स से ये भी कहा ना,
ये रह गया
था टीचर्स का, टीचर बाप समान है, पीड़ित है जो बाप के कर्तव्य, जो बाप की महिमा वो टीचर्स की महिमा। तो टीचर अर्थात अगर आई ना है क्योंकि फॉलो फादर, परंतु साकार में तो निमित्त में बाप को देखते हैं, तो इसके लिए आईना अगर खराब हो तो बाप दिखेगा नहीं। तो कैसा हो, स्पष्ट हो और पावरफुल हो आईना, स्पष्टवादी स्लोगन है ना, साकार वरदानों का पालना करना है तो स्पष्टवादी बनो। और भी कोई पॉइंट है,
वो रहेगी लगता पॉइंट है जो बाबा ने कहा जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ते उससे जोड़ते।
अरे हाँ वो एक रह गया पॉइंट, जैसे वो कनेक्शन जोड़ा और स्विच ऑन किया, यहाँ बाप से कनेक्शन जोड़ा और शुभ भावना शुभ कामना का कनेक्शन स्विच ऑन किया, तो आत्माएं इमर्ज होगी और फिर उनको ये पॉइंट चाहिए,
दिखाई पड़ेगा
योग का पॉइंट है, कनेक्शन। और एक हफ्ते में कुछ पावरफुल सब पावरफुल ही पावरफुल है। एक हफ्ते
में योगी वह है जो,
योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, सन्नाटा सा छा जाए,
जब देह से न्यारे होते हो फिर बाप को याद करते,
यही सच्चे ये सच्ची याद है। एक तो कर्मेंद्रियों की चंचलता के ऊपर, एक तो योगी के ऊपर, दूसरा था
साक्षात्कार
से खुश नहीं होना, फिर
नहीं जो पुरुषार्थ
एसी में ट्रेवल करना है या बकरियों में सब थर्ड क्लास में ये भी बोला ना रमनी बातें बोलते हैं,
मरीज का गरीब
हाँ सबको।
जो एक और बात बोली, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो ये माना कि मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता हूँ, ऐसा सोचकर खुश नहीं होंगे, लेकिन मैनर्स और
गुड अच्छे मैनर्स ऐसा है
उसकी बात की है।
अच्छा नहीं पूरा करते, ओम शांति। और भी कुछ याद आ रहे
हैं,
घर चलना है क्यों सीवन भाई क्यों चलना है घर बहुत हो गया। ओम शांति।